देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायस्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय एक श्लोक संख्या 29। इस अध्याय का शीर्षक है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। वेपयुस्तश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडिवं संस्रते हस्तात् त्वक्तैव परिदह्यते। वेपयुस्तश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडिवं संसते हस्तात् त्यक्तैव परिदह्यते। अजय जी बीटेक किए हैं ना आप, बीटेक संस्कृत में भी किए हैं। अच्छा पढ़े, अच्छा पढ़ते हैं, और कोई पढ़े पढ़िए। आनंद आनंद गौर हरि प्रभु आनंद अनंत रूप। हाँ मैं भूल के जाता हूँ आपका नाम, अनंत रूप गौर हरि प्रभु। आप हमेशा भूल जाता हूँ अनंत रूप गौर हरि प्रभु। लेकिन मैं क्या बोला था, अनंत रूप गौर हरि, अनंत रूप हरि, अनंत रूप गौर, बड़ा इधर बहुत अच्छा पढ़ते हैं ये भी। अच्छा और पढ़ेंगे पढ़ेंगे माता जी पढ़ेंगी, आप लोग पढ़िए। शब्दार्थ वे पथो शरीर का कंपन च भी शरीरे शरीर में मैं मेरे रोम हर्ष रोमांच च भी जायते उत्पन्न हो रहा है। गांडीवम अर्जुन का धनुष गांडीव संस्रते छूट या सरक रहा है। हस्ता हाथ से त्वचा च भी एवा निश्चय ही परिदह्यते जल रही है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तात्पर्य, शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से भी अस्पष्ट है। वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडी उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। अनुवाद दोहराइए, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो अर्जुन सर्वप्रथम भगवान जब दोनों तरफ के सैनिकों ने अपना शंख वादन कर लिया, सर्वप्रथम भीष्म पितामह ने अपना शंख वादन किया, सिंह की तरह गर्जना करते अपना शंख वादन किए। भीष्म पितामह जो कौरव कुल के सबसे वयोवृद्ध है, 400 वर्ष के योद्धा, जिनकी इच्छा मृत्यु को वर प्राप्त है, जिनको कोई मार नहीं सकता है, जब वो चाहेंगे तभी मर सकते हैं, बहुत प्रतापी, और युद्ध में सदा सर्वदा जो अजय रहे हैं, कभी पराजित नहीं हुए हैं, बहुत महान योद्धा जो कौरवों के पक्ष से सर्वप्रथम शंख वादन किए और बाद में अर्जुन के पक्ष से, युधिष्ठिर के पक्ष से भगवान ने शंख वादन किया, पांचजन्यम ऋषिकेशो देव दत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर। भगवान कृष्ण ने पांचजन्य शंख वादन किया और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भीम जो विशाल काय, जैसे भीम भी बहुत विशाल हैं, वैसे पौंड्रम दद्मौ महाशंखम, महाशंख बहुत बड़ा शंख हो, भीम के शंख को यहाँ महाशंख कहा गया है। पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर, भीष्म के, अरे भीम के बारे में कई विशेषण बताया गया है। भीम की विशेषता बताने के लिए भीम कर्मा माने बड़ा बड़ा काम भी करते थे, उनका नाम भीम था मतलब बहुत बड़ा बड़ा काम करते थे। और वृकोदर, वृक जस्य उदरम वृकोदरम, जिनके पेट में वृक नाम की अग्नि थी, बहुत खाते थे, बहुभोजी और बहुत बड़ा बड़ा काम भी करते थे। ऐसा नहीं कि तेरा रोटी बंदा, काम न धंधा तेरा रोटी बंदा। कुछ लोग होते हैं केवल खाते हैं और सोते हैं। लेकिन भीम खाते थे और बड़ा बड़ा काम भी करते थे। हम लोग देखते हैं जब बद्रीनाथ में जाते हैं तो एक बड़ा पहाड़ उठाकर सरस्वती नदी पर रख दिए हैं, इसको भीम पुल के नाम से आप लोग देखे होंगे ना, आप लोग नहीं गए हैं तो आप जाएंगे जब बद्रीनाथ में तो सरस्वती नदी जहाँ अलकनंदा नदी में संगम होता है, तो संगम से पहले बहुत रौद्र रूप है सरस्वती नदी का, गुफा से निकलते हैं बहुत गर्जना करते हुए और बहुत कलकल और धवल धारा बहती है सरस्वती नदी के तट पर, पश्चिमी तट पर ना व्यास गुफा है जहाँ महाभारत की रचना हुई थी, बहुत सुंदर सुरम्य जगह है। आप गए हैं ना, नहीं गए हैं तो वहाँ पहाड़ के गुफा से सरस्वती नदी निकल रही है, वहाँ दर्शन होता है लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर जाकर के अलकनंदा में मिल जाते हैं। तो सरस्वती नदी को एक बार पार करने के लिए पांडवों को जरूरत पड़ी तो भीम एक बड़ा पहाड़ उठा करके, सपाट बहुत बड़ा पत्थर है, उस पर रख दिए, तो भीम पुल के नाम से आज भी जाना जाता है। तो भीम बहुत खाते थे तो बड़ा बड़ा काम भी करते थे, ऐसा महाभारत में कहा गया कि जितना खाना बनता था, मान लीजिए 500 चपाती बनता था तो 250 चपाती भीम खाते थे, आधा भीम खाते थे और आधा में और सब भाई लोग खाते थे, इसलिए भीम कर्मा वृकोदर, उनकी जठराग्नि बहुत तीव्र थी, वृक नाम की अग्नि थी उनके पेट में। हमारे यहाँ बिहार में एक लोकोक्ति है कि भीम जो भी खाते हैं हजम हो जाता है, तो कभी कभी भीम को ईर्ष्या होता था तो कभी मिर्ची गोनी का गोनी खा जाते थे और शकुनी को बार बार टॉयलेट जाना पड़ता था। एक बार भीम ने वर मांगा था कि मैं जो भी खाऊं मुझे उसका कोई तकलीफ ना हो, मामा शकुनी को जो है, इसी लोग कहते हैं खाएं भीम और हगे शकुनी, कहावत है। भीम खाते थे और डायरिया जो है शकुनी को होता था। इसलिए कभी कभी ऐसा चीज भी खाते थे कि पेट में जलन हो, बीमारी उत्पन्न हो, उसका रिएक्शन जो है शकुनी को होता था। बिहार में प्रसिद्ध एक कहावत है, खाएं भीम और हगे शकुनी, शकुनी के बारे में ऐसा है। तो भीम जो है जैसा नाम है वैसा पौंड्र नाम का शंख बजाए, पौंड्रम दधमऊ महाशंखम भीमकर्मा बृकोदर। और फिर बाद में युधिष्ठिर महाराज शंख बजाए, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्प कौ। अनंत विजय नामक शंख युधिष्ठिर महाराज बजाए और अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च। नकुल और सहदेव सुघोष और मणि पुष्पक शंख बजाए, सुघोष मणि पुष्पक यही ना, सुघोष और मणि पुष्पक शंख वादन किए। नकुल सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पक। तो ये होने के बाद फिर अर्जुन के मन में स्पृहा हुई, जिज्ञासा हुई कि जरा देखते हैं हमारे विपक्ष में कौन लोग युद्ध के लिए आए हैं। तो उन्होंने अपने मित्र और सारथी और कृष्ण से कहे कि हे मधुसूदन, हमारे रथ को जरा दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित करिए कि मैं देखूं कि कौन हमारे विरुद्ध में खड़े हैं। तो श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर दिए, जहां से अर्जुन आसानी से देखने लगे तो देखे तो कुल के वयोवृद्ध भीष्म पितामह खड़े हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, गुरु पुत्र अश्वत्थामा हैं, कृपाचार्य हैं और बहुत सारे संबंधी हैं, साले हैं, चाचा हैं, ससुर हैं। तीनों को देख करके अर्जुन के शरीर में भय उत्पन्न हो गया और उनके रुमावली खड़ी हो गई और आवाज नहीं निकल रहा था और धनुष हाथ से सरक रहा था। गांडीवं संस्रते हस्ता त्यक्तैव परिदह्यते, और शरीर में जलन होने लगा। उनको भय हो गया, भय इसलिए हुआ कि मैं कैसे भीष्म पितामह पर बाण कैसे चलाऊंगा। भीष्म पितामह जो बहुत पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं, जिनकी हमेशा अर्जुन पूजा करते थे, गुरु द्रोणाचार्य को, भीष्म पितामह को, कृपाचार्य को और गुरु पुत्र अश्वत्थामा को प्रतिदिन प्रणाम करते थे। जैसे भगवान श्री राम प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करते थे, तदुपरांत अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथ था और मात पिता गुरु नाम महिमा था। भगवान आदर्श शिरोमणि हैं, तो प्रातः काल जगते थे तो गुरु को प्रणाम करते थे और फिर माता पिता को प्रणाम करते थे। तो ने गुरु मान लीजिए दूर होंगे तो कहाँ खोजने जाते होंगे गुरु वही निवास करते थे लगता है। गुरु का भी निवास स्थान समीप में ही होगा, यह राजभवन के अंदर ही रहते होंगे। तो प्रातः काल उठ करके माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लेते हैं और अर्जुन भी यही करते थे। अर्जुन प्रथम गुरु को, भीष्म पितामह को, अपने भाई युधिष्ठिर महाराज को, कुंती महारानी को प्रणाम करते थे, अपने से बड़े लोगों को प्रणाम करते थे। अपने से बड़े लोगों को प्रणाम करने से चार चीज बढ़ता है। चाणक पंडित लिखते हैं कि अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धो पशे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जसो बलम्। आयु विद्या जस और बल बढ़ता है प्रणाम करने से दूसरे को। अपने से जो भी बड़े हैं, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, जो भी, तो उनको प्रणाम करने से चार चीज बढ़ जाती है, आयु विद्या जस और बल। तो अर्जुन के मन में ये हुआ कि मैं जिनको हमेशा जिनका पूजन किया हूँ, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, इनकी पूजा करनी चाहिए। तो मैं बाण से कैसे पूजा करूँगा, इन पर बाण से कैसे प्रहार करूँगा, वो भी जिनके छत्र छाया में हम जीवन यापन किए हैं। अर्जुन ही नहीं, पांच पांडवों का जो जीवन बचा भीष्म पितामह द्रोण और विदुर जी के कृपा से लोग बच गए, नहीं तो मार दिए गए होते। इनका बचपन जो है पिता के बिना बीता, पिता मर गए थे बचपन में ही पांडु महाराज, तो विशेष करके भीष्म पितामह गुरु द्रोण और विदुर जी के चलते बच्चे और उनके मार्गदर्शन में लोग बड़े हुए पले हुए थे। अर्जुन कहे कि मैं तो वैसे ही हम लोग थे जैसे नवजात पक्षी आजात पक्षा, जिस पक्षी के पंख नहीं होते हैं, बच्चे होते हैं तो माँ पर आश्रित होते हैं, मादा पक्षी अपने चोंच में बच्चों के लिए ले आती है, में डाल देती है। छोटे बच्चे बहुत कोमल होते हैं जिनके पंख अभी नहीं होते हैं, जैसे वृत्रासुर लिखे हैं अजात पक्षायु मातरम खगा, हे प्रभु हम तो आप पर पूर्ण आश्रित हैं। जैसे नवजात पक्षी के बच्चे माँ पर आश्रित होते हैं, माँ खिलाएगी तो खाएंगे। अस्तन्य में था बस छतरा सुधार था, जैसे गाय बच्चे को जन्म देकर देती है तो नया बछड़ा घर में रहता है, वो चरने नहीं जाता है, और माँ जंगल में चरने के लिए गई है तो माँ का इंतजार करता है। क्षुधा से क्षुधित क्षुब्ध होकर के माँ की बाट को देखता है, जब माँ आएगी तो दूध पिलाएगी। अस्तन्यम यथा बस सत्रा सुधार था, वैसे हम लोग आप पर आश्रित थे और आज भी हैं। भीष्म पितामह के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं अर्जुन। महान लोग होते हैं वो कृतज्ञ होते हैं, किसी के उपकार को भूलते नहीं हैं। कोई आपके लिए आपके जीवन में कोई थोड़ा भी उपकार कर दिया है तो उसका कृतज्ञ होना चाहिए, अपने जीवन में उसको भूलना नहीं चाहिए। अर्जुन की ये महानता है कि भीष्म पितामह के उस कृतज्ञता को याद कर रहे हैं कि हम लोग इनके छत्र छाया में पले हैं, से पक्षी पंख से अपने अंडे को ये करता है, विकसित करता है, पक्षी पंख से अपने बच्चे को अंडे को छाया देते, उसी तरह हम के कृपा रूपी पंख के छाया में बले हैं, बढ़े हैं और पले हैं, इनको कैसे बाण चलाऊंगा। और गुरु द्रोण जो हमारे बहुत सम्माननीय हैं, गुरु हैं, जिनके कृपा से मैं सारा विद्या प्राप्त किया है, गुरु तो हमेशा पूजनीय होता है, गुरु पर कैसे बाण चलाऊंगा। और द्रोणाचार्य के बहुत प्रिय अर्जुन थे, सभी शिष्यों में अर्जुन बहुत प्रिय थे, अर्जुन को अपने पुत्र अश्वत्थामा से भी अधिक स्नेह करते थे। अर्जुन को बहुत सारी विद्याएं उन्होंने बताई थी, तो अर्जुन वही सोच करके उनके हृदय में बहुत दुख हुआ कि मैं इनके ऊपर कैसे बाण चलाऊंगा, ये लोग सदा हमारे लिए पूजनीय हैं, तो ये सोच के इतना विषाद हुआ और भय भी हुआ। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। अर्जुन कहे कि मेरे हाथ से धनुष सरक रहा है और रोंगटे खड़े हो गए हैं। भय में और हर्ष में, दोनों परिस्थिति में ये भाव आता है दोनों परिस्थिति में। भय में भी आंसू आता है और हर्ष में भी आता है। जब कृष्ण द्वारका मथुरा जाने लगे तो गोपियों को बहुत दुख हुआ और कृष्ण कह कि हम जा रहे हैं, आप लोगों का आज्ञा चाहिए। तो गोपी ने कहा कि हम लोग आज्ञा कैसे दे, अगर हम लोग कहते हैं कि आप जाइए तो ये भी प्रेम में ग्लानी होगी। कोई आया है कि हाँ आप जाइए तो वो सोचेगा आदमी कि ये भी चाहता है कि सिर पर भार है कब जाए। कोई मेहमान आते हैं तो कोई बोलता प्रभु जी अब जाते, लोग बोले नहीं दो चार दिन और रुकिए। कोई ये नहीं कहता हाँ ठीक है चले जाइए। अगर कोई कहते हाँ हाँ प्रभु जी जितना जल्दी जाइए तो लगेगा कि ये इसको भार लग रहे हैं। तो जासु पयान समय तुमरो हम का कहे आप हमें समझाई है। और कोई जा रहा है तो उसको कहेंगे हाँ जाइए और बोले नहीं रुक जाइए तो रोकने पर भी अमंगल होता है। रोक कहीं जो तो अमंगल होए। गोपियों ने कहा कि अगर आपको हम लोग रोकते भी हैं रोक देते हैं तो भी अमंगल होगा। कोई जा रहा है तो आंसू गिराना भी अमंगल होता है। कोई यात्रा में जाए तो आंसू गिराना भी नहीं चाहिए और रोकना भी अमंगल होते। जाना ही है, उसको जरूरी है जाना है तो जाएगा ही तो रोकना। तो गोपियों के मन में बड़ा ये हो गया क्या हम लोग कहें, जाने के लिए कहें कि रोकें कि रोएं तो सब अमंगल होगा। तो अर्जुन की भी यही स्थिति होगी कि क्या करें, कैसे इनको मारूंगा मैं। अर्जुन के मन में ऐसा भाव आ गया कि कुछ समझ नहीं आ रहा था अर्जुन को। अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। कि सामने हमारे ये लोग खड़े हैं, ये लोग नहीं रहते तो युद्ध कर सकता, लेकिन अभी ये सामने प्रथम भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा हैं, इनसे कैसे मैं युद्ध करूं। कोई अपने गुरु से युद्ध कर सकता है। कृष्ण जब ज्यादा ये कहे तो कहे कि आप संदीपनी को आप मार सकते हैं, आप अपने गुरु को मार सकते हैं। मानो अर्जुन से कृष्ण कहे कि आप इस समय युद्ध के समय में इतना क्यों सोच रहे हो, युद्ध में यह नहीं देखना चाहिए, अगर आपके प्रतिपक्ष में आए हैं तो लड़ाई करना चाहिए, ये देखेंगे तो पराजय हो जाएगी। आप युद्ध के लिए इतना प्रयास किए थे, मेरे पास भी गए थे कि आपकी सहायता चाहिए, अब युद्ध से मुंह मोड़ रहे हैं तो ठीक नहीं है। भगवान कहे कि इस समय युद्ध से अगर भागोगे तो तुम्हारी कायरता होगी और दुर्योधन तुम्हें कायर कहेगा तो फिर युद्ध के लिए आना पड़ेगा। अर्जुन को भगवान कहे कि अगर दुर्योधन तुमको कभी ताना मारेगा तो बहुत कायर था भाग गया तो फिर तुमको गांडी उठाना पड़ेगा। इसलिए इस विषम परिस्थिति में दोनों तरफ सेना खड़ी है, युद्ध की पूरी तैयारी हो गई है, तो पहले करना चाहिए था। अब युद्ध से भागोगे, क्षत्रिय युद्ध से भागते हैं तो उनको नरक मिलता है और युद्ध में लड़ते हुए मर जाता है